اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، خود کو یقین دلائیں کہ میں علم کی محفل میں ہوں، اور علم کی محفل میں فرشتے آتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز یہاں رکاوٹ نہ بن جائے کہ جس سے فرشتے پھر ناراض ہو جائیں. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لباس کا بیان، اس میں سے ہم سیکنڈ ٹاپک شروع کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ لباس کا مقصد. ایک انسان لباس کیوں پہنتا ہے، اس سے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور میرے حساب سے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، پیج ہے 70، مقاصد اللباس. تو پہلی چیز، لباس کا اولین مقصد انسانی جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا ہے. لباس کا دوسرا مقصد انسان کو زینت عطا کرنا ہے. دونوں کی دلیل سورۃ الاعراف آیت 26 میں موجود ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بنے. بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اس ایک آیت سے دو مقاصد سامنے آتے ہیں. نمبر ایک، یواری سواتکم، اس پہ ہم انٹروڈکشن میں بھی تھوڑی بات کر چکے. تھوڑی سی بات یہاں مزید کر لیتے ہیں کہ پہلا بنیادی مقصد لباس پہننے کا جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء دیے. یہ دو چار جملے لکھیں گے نا، بالکل ایسے جیسے وہ تیر بہدف ٹھکانے پہ پڑتے ہوئے تیر کی طرح آپ کو انشاءاللہ اپنے لباس کا مقصد سمجھ آئے گا. اور پھر ہم اس آئینے میں جب اپنے لباسوں کو دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں دوسروں سے پوچھے بغیر بھی سمجھ آئیں گی. تو پہلی چیز اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جسم کے قابل شرم حصوں کو کیسے چھپاتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جسم کا عضو کسی خاص مقصد کے لیے دیا ہے. مثلاً آپ دیکھیے، ہمیں منہ دیا، کھانا کھاتے ہیں، زبان دی ہے، ٹیسٹ بھی ہے، بولتے ہیں، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، گردے دیے کلینزنگ کے لیے، سٹمک دیا کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، دل دیا حرکت کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے. اس سے زیادہ آپ خود سوچ لیں، ہم سب جانتے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ جب جسم کا جو عضو دیا گیا اس سے وہی کام لیا جائے گا نا. آپ دیکھیے کہ کان ایک ایسی شیپ میں اللہ نے بنا دیے کہ آپ جو بات نہیں سننا چاہتے تو آپ کی یہ جو انگلیاں نا، اعصابیہ، یہ پورس، یہ آپ اپنے کان میں ڈالیں. سائنس بتاتی ہے کہ انگلی کا یہ سائز یہ جو ہوتا ہے، اور کان کی کیویٹی کا جو باہر کا ایک حصہ، یہ دونوں بالکل سائز میں برابر ہوتے ہیں. جس کو آپ کہتے ہیں نا ایئر ٹائٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ اور میں اپنی ان انگلیوں کو بالکل کانوں میں ڈالیں تو ہمیں کسی کی آواز نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا سا کیوں رکھ دیا کہ کان سارا دن سنتے ہی رہیں گے، کچھ باتیں، کچھ شور، کچھ جو سننا نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسی بات تمہارے ارد گرد ہونے لگے کہ جس کو تم سننا نہیں چاہتے تو یہ انگلیاں ہی کافی ہیں. اور دیکھیں ہاتھ کی رینج میں ٹک سیدھی اندر جاتی ہے، پلگ ہے، جیسے ایئر پلگز ہوتے ہیں. بلکہ آج کل جو ایئر پلگز بنتے ہیں وہ بالکل اسی طرح اسی شیپ کے بنتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ کانوں سے سنو، لیکن جو نہیں سننا اس کو کس کو ڈھانک لو. آنکھوں پہ چلیے، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں ایک آئی بال ہوتا ہے، ایک وائٹ حصہ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں. دیکھو عام حالات میں، اب دیکھیے اس وقت میری آپ کی آنکھیں کھلی ہیں. ایک صورت یہ تھی مسلسل کھلی رہتی، لیکن پھر یہ جم جاتی، یہ نوٹ کیجئے. پھر آنکھیں اپنی جگہ پہ اتنی سٹف ہو جاتی، بالکل ایسے ہی اگر ایک کروٹ پہ سوئیں ساری رات کو تو صبح اٹھے تو اٹھا نہیں جاتا. یا اللہ نہ کرے اگر بیک پہ کوئی تکلیف ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے مجبور کر دیا کہ آپ مڑ نہیں سکتے، تو آپ دیکھیے کہ لیٹنے سے زیادہ بندہ پھر بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا، کبھی گردن میں بل پڑا ہو تو انسان لیٹنے سے ڈرتا ہے کیونکہ جب اٹھوں گا تو ہوگا. لیکن پھر آ کے یہ دیکھیے، یہ پلکیں جو جھپکتے ہیں آپ پر میں، یہ کیوں دی؟ کہ یہ مشین کام کرتی رہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی ایسے کھلے بٹن ہوتے، یہ پپوٹے نہ ہوتے، یعنی پوری آنکھ کھلی سیدھی ہوتی، تو پھر میرے آپ کے پاس عذر تھا کہ اللہ کرتے کیا، منظر تو برا تھا، چیز تو بری تھی، ہم کیسے وہاں سٹتے؟ तो अल्लाह ने ये पपोटे डाल दिया आपके मेरी मजबूरी को सामने रखते हुए कि जब कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे सामने आ जाए कि जिसको नहीं देखना तो आंखें बंद कर लो, और मर्द है तो उसके सामने औरत आ जाए तो यह गुद्दू में नफ्स आ रही है, थोड़ा सा हिस्सा झुका लो, और औरत के सामने मर्द आ जाए तो यजदुद नमिन अबसारी है ना। इन दोनों मिसालों से आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे आपको जो बॉडी पार्ट्स दिए हैं उनका एक खास मकसद है। और आप देखें कि चूंकि हमने अक्सर खाना होता है और हमने अक्सर देखना होता है और अक्सर हम सुनते हैं, तो ये तीन मेन आर्टिकल बिल्कुल हमारे फ्रंट पेज पे लगा दिए। जैसे किसी भी वीडियो के मेन टाइटल पे या बुक पे कुछ अहम चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं, क्योंकि ये हर वक्त यूज़ किए हैं। ये ऐसे मुझे लग रहा है बात करते हुए कि जैसे हमारे किचन के काउंटर पे टोस्टर भी अमूमन रखा ही रहता है, ब्लेंडर भी होता है, कॉफ़ी मेकर है, क्योंकि ये हर वक्त चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो असल मौजू है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी ख़ास और मौके की इंतज़ार में होती हैं। बहुत सारे अज़ाएँ, गुर्दे, फेफड़े वो जिस्म में छुपा दिए अंदर, क्योंकि बाहर उनका कोई काम नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुंह के रास्ते स्टमिक को एक ऐसा एक्सेस दे दिया कि बस आप इधर से खाना डालते हैं तो वो अंदर खुद ही जाएगा, तो इसलिए फिर मैदा अंदर है। अगर मुझे आपको मैदे के साथ कुछ मैनुअली करना होता तो ये बाहर होता, चाहे हाथ के बाहर इसकी कोई लटक रही होती नाली या कुछ होती। दैट मीन जिस्म का हर उस बिल्कुल वहाँ है जहाँ होना चाहिए। अब चलते हैं लफ्सवाती को। बात थोड़ी पर्सनल है, मुझे खुद अंदाज़ा हो रहा है बात करते हुए, लेकिन हम यही समझने आए हैं। अल्लाह ताला ने हमें बाकी अज़ा की तरह प्राइवेट पार्ट्स दिए, शर्मगाह की चीज़ें जिसको आप कहते हैं। और अमूमन इंसानों और जानवरों में ये दो जगह होती हैं, दो सुराख हैं जिसको अल्लाह ताला ने ज़रूरियात के तहत इंसान के साथ लगा दिया। अगर बात समझना चाहते हैं ना, तो मैं सिंपल सी मिसाल हूँ कि जो आपके घर और आपके जिस्म को रिलेट करूँ ना, तो प्राइवेट पार्ट्स ऐसे हैं जैसे वॉशरूम्स, और आपका फेस ऐसे जैसे आपका फ्रंट या किचन या आपका आम हिस्सा। अब ज़रूरत के तहत प्राइवेट पार्ट्स दिए गए। इमेजिन कीजिए प्राइवेट पार्ट्स हाथों में होते हैं, मुंह पे लगे होते हैं, बुरे लगते हैं ना। ये एक पर्सनल मैटर है, और आप तसव्वुर की आंख से किसी जानवर के प्राइवेट पार्ट को भी देख लीजिए, एग्जैक्टली वहाँ और उतनी जगह पर जहाँ उसकी ज़रूरत है। अगर गाय भैंस को देखें, बैल को देखें, तो ऊपर एक दुम लगी हुई है और वो दुम फ्लेक्सिबल है। ये सब के पीछे ज़रूरत है। हर वक्त ढकी रहे, जब जिस्म से कोई गंदगी निकलनी है तो वो ज़रा सा मूव करती हैं और उसको अलग कर लेती हैं। बस अल्लाह ने इंसान को जो प्राइवेट पार्ट्स दिए थे उसके दो मकसद हैं। जिस्म से गंदगी का एक्सक्रीशन, वो यूरिन की सूरत में है, वो स्टोल की सूरत में है। अल्लाह ताला ने इतना प्रॉपर बनाया है, ज़रा पूछिए किसी से, अल्लाह ना करे हम में से किसी को ये तकलीफ हो जो इससे किसी खराबी का शिकार हुए हो। जीना धोबर, किसी के सामने नहीं बंदा बैठ सकता। अब एक मकसद तो हासिल हो गया। तो आम तौर पे पहले दौर में तो ख़ास तौर पे ऐसे ही था कि टॉयलेट्स और बाथरूम छुपा के बनाए जाते थे। चाइनीज मिथ में आज भी कहते हैं कि घर के अंदर नहीं टॉयलेट वो रखते, घर के बैकयार्ड, जैसे माशाल्लाह यहाँ लंदन में घर हैं कि पीछे एक लंबा बैकयार्ड होता है ना, तो जो आप लोगों का बैक रूम है जिसको मोस्टली लोग स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ बाथरूम होते थे। मनहूस समझते हैं, मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि वो लोग घर के अंदर फारिग होने को बिल्लाओं के आने और नज़ूल का जरिया समझते थे। ये पुराने दौर की बातें हैं, जैसे हमारे अपने बड़े भी बाज़ दफ़ा पसंद नहीं करते थे अटैच टॉयलेट को। और सच्ची बात है, जब खाना ही दिन में एक या दो बार है तो एक से दो बार बाहर जाके फारिग होना क्या बड़ी बात थी। जब खाना हर वक्त का हो गया, स्नैकिंग और चिट चैट और दिस, तो फिर वॉशरूम भी अंदर आए, करीब आए, बाहर आए। अब आप देखिए कि प्राइवेट पार्ट से जब एक काम ये लिया गया, तो अल्लाह ने इसको जिस्म में कहाँ रखा है, बच्चे ही को तसव्वुर में करके देखिए, ऐसा छुपा हुआ है कि कोई भी छुपाना चाहे तो अपना खुद भी छुपा सकता है। नहीं पसंद करता इंसान अपना दिखाना। दूसरा आप देखिए, ये सेक्स टूल भी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसानियत की बका के लिए इस हिस्से को कुछ काम दिए हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने औरत और मर्द की शेप को बिल्कुल वैसी बना दिया जैसी कि ज़रूरत का तकाजा था। अब आप इस छुपी हुई चीज़ को जितना छुपाएंगे, आप फितरत के करीब हैं, आपकी इज्जत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बात वाज़े। जितना इसको खोलेंगे वो कितना खुलेगा, मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने एक चीज़ जो देखी, किसी नाम लिए बगैर बताती हूँ, दुनिया के किसी बड़े मशहूर मुहज़्ज़ब मुल्क में रेस्टोरेंट है और उसके अंदर जाएं तो वो पूरा रेस्ट रूम लगता है टॉयलेट। जिन कुर्सियों पे लोग बैठ के खाते हैं वो बिल्कुल टॉयलेट की सीट्स हैं। हर चीज़ उस रूम में देखेंगे ना एकदम, तो ऐसे लग रहा है एक बड़ा सा टॉयलेट है और सारे लोग बैठे हैं साथ। कभी आपने बच्चों के स्कूलों में देखे होंगे एक एक जगह में छे। ये है इंसान की हलाकत की, तबाही की सूरत, कि वो सिर्फ आर्ट के नाम पे, फन के नाम पे, और भी इस तरह की गंदी चीज़ें आपको इर्द गिर्द मिल सकती हैं। अल्लाह ने कहा इसको छुपा दो, ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करो, फिर ठुक जाओ, फिर छुपा दो। अब आम तौर पे आप देखिए कि अल्लाह ने इसको छुपाया, बालों से छुपा दिया। फिर आप देखिए कि अगर आप महसूस करें ना, ख़ास तौर पे इसमें औरत ज़्यादा छुपी हुई है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने एक औरत को इतना सिक्योर कर दिया कि कोई ज़बरदस्ती भी उसके साथ नहीं कर सकता। अब आइए लिबास पे बात करते हैं। आप एक लिबास इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका जिस्म आई एम अवेलेबल की हद से निकलकर ज़रूरत की हद पे हो जाए। बात समझ रहे हैं? बात पर्सनल है लेकिन ये समझनी ज़रूरी है। ये हमारे दीन का हिस्सा है। दीन का हिस्सा कैसे है कि इस अपने हिस्से को दूसरों की नज़रों से हत्तुल वसा छुपा लो। अच्छा, अब कुछ लोगों ने जो बड़े ही इंटेलेक्चुअल है वो कहते हैं इसका ताल्लुक सिर्फ दो जगहों से, और जो शॉर्ट अंडर गारमेंट्स हैं उनको कहती है बस ये पहन लो, छुप गई। छुप गई तो छुपती तो नहीं है। छुपती कब है वो? जब उसके इर्द गिर्द के रास्ते भी बंद किए जाए। तो एक मर्द है या औरत, देखिए इसमें फिर मैं कहूँगी सिर्फ औरतों के लिए पर्दा नहीं है, मर्दों के लिए भी है। तीन पर्दे की चीज़ें हैं, लिख लें। नंबर एक, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, सामने जो मर्जी बिखराओ तुम निगाहें नीचे रखो। ये पहला पर्दा है और ये औरत के लिए भी है, ये मर्द के लिए भी है। सूरत नूर में यगुद्दु मिन अबसारिहिम मर्दों के लिए, व यक़्फ़ज़ु फ़ुरूजहुम, साथ ये दोनों चीज़ें। जब नज़र झुकती है तो ऐसे सिफली जज्बात ही नहीं पैदा होते। और दूसरी तरफ औरतें यगुद्दुत न मिन अबसारिहिन न यक़्फ़ज़ न फ़ुरूजहुन, तो पहला ढक्कन तो अल्लाह ने झुकी हुई निगाह का लगाया है। आप किसी को, बेटे को, बेटी को, औरत को, मर्द को, किसी को भी ये मौजू समझाना चाहते हैं तो यू नीड टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि बेटा नज़र नीचे रखते हैं। माँ को भी देखे तो नीची नज़र से रखे। किसी ने चंद दिन पहले एक सवाल भेजा आपके मौजू से मुतल्लिक है तो बता देती हूँ, शायद फ़ायदा हो किसी को, कि एक माँ घर में अपने बेटे के सामने किस हद तक एक्सपोज हो सकती है। क्या सर पे दुपट्टा ले, चाहे सीने पे ले, ये करे वो करे, और सम टाइम इट बिकम हार्ड, क्या करें? तो मैंने उनको बिल्कुल यही जवाब दिया था कि आप अपने घर के महरम रिश्ते, जिसमें भाई भी हो सकते हैं, बहन है तो भाई, माँ है तो बेटा, और बेटा भी जवान है, माँ भी जाहिर है कि उसमें भी कशिश है, तो मैंने कहा कि आप अपने घर के मर्दों को, और ये दिन पहले दिन से शुरू हो जाएगी बात, आप अपने मर्दों, बच्चों, बेटों को जब झुकी निगाह की दावत देंगे तो ना बहन को देखेगा ना माँ को देखेगा। और यकीन करें मैं दिन रात इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ, जहाँ मर्द निगाहें झुका लेते हैं वहाँ औरतों के लिए पर्दा करना, पर्दे से मुराद फिर वो इस सार चेहरे का नहीं कर रही, एक आम अपनी बॉडी को छुपाना इतना आसान है। खांस के आ रहे हैं, इट्स ओके। पहली चीज़ नज़र झुकी हुई, दूसरी चीज़ यहाँ नहीं है कुरान में लेकिन वो आपको हदीस से मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये कहते थे, अब्दुल्ला बिन मसूद का भी यही अमल था और बाकी सहाबा जब अपने घर में भी दाखिल होते तो खांस के आते। ये हत्ता तस्तान सू का एक एंगल है कि एक मर्द अपने भी घर में आ रहा है तो ज़रा सा खांसे क्यों? दोस्त की, बीवी की दोस्त आई होगी, कोई कज़न आके बैठी होगी, ज़रूरी तो नहीं बीवी। हत्ता कि एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी, मेरे घर में तो सिर्फ मेरी माँ है, तो क्या मैं भी इजाज़त लेके आऊँ और ऐसे खांस के आऊँ? कहा क्या तो अपनी माँ को बरहना देखना चाहता? यानी पहले बड़े घर तो नहीं थे, हो सकता है अंदर आओ तो वहाँ कपड़े बदल रही हो सकता है सो रही है तो उसका ज़रा सा पाँव खुल गया, हो सकता है ना। तो पहली चीज़ झुकी हुई नज़र, दूसरी चीज़ यह कि अगर मर्द खांस के आते हैं, खांसने को आप किसी भी एंगल से दे दें, आवाज़ लगा दें, दरवाज़ा नॉक कर दें, तो दो चीज़ें तो बन गई ना। अब तीसरी है उसके बाद के फिर दोनों लिबास ही वो पहने, अपने जिस्म को उस हद तक रखें कि अगर बिल फर्ज अचानक भी निगाह मिल गई, कोई बगैर इजाजत के आ भी गया तो फिर बेपर्दगी ना हो। तो युवारी सवाती को मुझे लगता है समझ आ गई है। और हदीस में इस पे दो बड़े क्लियर लफ्ज हैं, शफाफ ना हो व साफ ना हो। शफाफ क्या होता है? सी थ्रू। اور بس صاف وصف بیان کرنے والا ٹائٹ جسم کا فگر نہ نظر آئے. بس اس دو پہ رکھ لیجیے, اگلے مسئلے میں ہمیں تیسرا بھی سمجھ آئے گا. یہ تو چیز ایک تھی. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا, خوبصورتی. آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے ہمیں کسی ایک رنگ میں نہیں رکھا کہ آپ صرف سبز رنگ پہنے. اچھا آپ کالا نہیں پہن سکتی, اور سرخ رنگ فلاں نہیں پہن سکتا, اور نیلا وہ نہیں پہن سکتا, اور پیلا وہ نہیں پہن سکتا. اللہ نے آپ کو مجھے اس میں نہیں رکھا, کوئی بھی رنگ پہن سکتا ہے. اب یہ ریش کس کے لیے؟ آپ کہتے ہیں پھر یہ عورتوں کی بات ہے, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے فہرست میں بھی آپ کو بتا دیا ہے عربی زبان میں ریش کس کو کہتے ہیں. داڑھی کو کہتے ہیں, لہیا بھی کہتے ہیں اور ریش بھی کہتے ہیں. وہ وہاں مردوں کے لیے بات ہوگی, لیکن آپ کے میرے لیے یہ ضابطے میں رہتے ہوئے مہذب انداز سے پیشن نہ بنا لیں, مقصد حیات نہ بنا لیں کپڑے بنانا. لیکن ضرورت ہے, کپڑے پہنتے ہیں, سب پہنتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے نا, گرمیوں میں بھی, سردیوں میں بھی ہوتی ہے, شادیوں میں بھی جاتے ہیں, تو موقع کی مناسبت سے انسان کو درست دکھنا چاہیے. عام گھروں میں ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں, ہونا چاہیے نا. تو آپ اپنے کپڑے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ نے اگر پرنٹڈ پہن لیا تو گناہ گار ہے, اگر موتی لگا لیے بہت بری بات ہے, لیس لگائی تو بہت بری بات ہے. تو یہ آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کچھ بہت کر کے بھی نہیں ان کا کپڑا خوبصورت ہوتا, اور کچھ بھی نہ کریں تو بھی خوبصورت ہوتا ہے. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لباس خوبصورت ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے نمازیں نہیں قضا ہوں گی, اس کے لیے ہزاروں ڈالر نہیں لگیں گے. صرف ایک ملک سے دوسرے ملک منگانے میں اس پہ اتنا خرچہ نہیں آ جائے گا کہ جتنے میں ہو سکتا ہے کسی کے ایک ہفتے کا پورا راشن آ جائے. اور پھر ولباس التقویٰ, تقویٰ کا لباس بہترین ہے. یہ کہاں آئے گا؟ انشاءاللہ اسی بک میں آگے ہم پڑھیں گے. تو دو ہو گئے, اب چلیے تیسرے پہ. لباس کا تیسرا مقصد انسان کو سردی گرمی سے محفوظ رکھنا ہے. اور اسی آیت سے ایک اور بھی چیز ملتی ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ دونوں باتیں ملتی ہیں سورۃ نحل آیت 81 سے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں, تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں, اور ایسے لباس جو باہمی جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرماتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. تو گرمی سردی سے لباس بچاتا ہے, سچ بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. گرمی کو تو ایک سائڈ پہ کر دوں, ذرا سردی ہو اور آپ کے پاس کپڑے نہ ہوں, کیا حال ہوگا؟ ٹھٹھر رہے آپ, جیکٹ نہیں, سویٹر نہیں, کچھ نہیں, اور آپ باہر کھڑے ہیں گھر کے دروازے پہ. کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی آپ جانوروں کو جیکٹس پہنے نہیں دیکھیں گے, لیکن انسان پہنتے ہیں. تو یہ بھی مقصد ہے, اور اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ لباس موسم کی مناسبت سے ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیے گرمیوں میں موٹے کپڑے پہن کر آپ کسی اجتماعی محفل میں بیٹھ گئے تو آپ کا پسینہ دوسروں کو بھی تنگ کرے گا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو لڑائی سے بچانے والا لباس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زرہیں کہتے ہیں. پہلے دور میں لوگ آئرن کلاتھس پہنتے تھے, یعنی زنجیروں سے بنا ہوتا تھا, یا لوہے کی ایک شیلڈ ہوتی تھی تاکہ تیر تلوار اس انسان کے اوپر نہ آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تکمیل نعمت سے مراد ایسی نعمت ہے جس میں انسان کے خیر اور بھلائی کے لیے بے شمار پہلو ہوں. چلیے چوتھا مقصد, تین ہو گئے, دوہرا لیں ذرا مل کے. پہلا سب بولے یواری سواتی کو, دوسرا ریشا, تیسرا گرمی سردی سے بچانا, اب چوتھا پڑھتے ہیں. لباس کا چوتھا مقصد انسان کی فطری شرم و حیا کی حفاظت کرنا ہے. دلیل اس کی ان یال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا یغتسل بالبرازی بلا ایزار فصعد المنبر فحمد اللہ واثنا علیہ ثم قال ان اللہ حی ستیر یحب الحیا وستر فیض تسل احدکم فل یستر رواح ابو داود. حضرت یالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلے میدان میں ننگے نہاتے ہوئے دیکھا تو ممبر پر تشریف لائے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی, اور پھر فرمایا بے شک اللہ حیا فرماتا ہے, پردہ پوشی فرماتا ہے, حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے, پس جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو ستر چھپائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. क्या पता चला कि खुलेआम गुसल नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कि ये चीज़ जो आपके मेरे सामने रखी गई आखिरी हदीस में, इससे क्या पता चलता है कि फितरी शर्मो हया को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक तो होता है कि इंसान अच्छा लग रहा है कि बुरा, इसको पीछे कर दें। एक और भी चीज़ है, इंसान की इज्जत अल्लाह ताला चाहते हैं दूसरों के सामने हो। मसलन अब छोटी सी, फिर इसमें पर्सनल चीज़ है लेकिन हम सबके साथ लगी हुई है तो हमें इसमें शर्माना नहीं। देखिए, टॉयलेट में जाते हुए दरवाज़ा बंद करने का हुक्म है, जैसे अभी यहाँ गुसल की बात है। क्यों? इंसान अपनी कुछ ऐसी ज़रूरियात पूरी कर रहा होता है तहारत करते हुए कि जो मजबूरी तो है लेकिन किसी के सामने अगर हम करें तो उसकी नज़र में हमारी इज्जत ख़त्म हो जाए, है कि नहीं? अल्लाह सुब्हान तआला हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। हम बाहर लोगों में आते हैं, हम मुहज्जब होते हैं, डिसेंट लगते हैं, एक नमाजी है, मुसलमान है, लोग कहेंगे ये 5 वक्त का नमाजी है, ये मिसवाक करता है, इसकी दाढ़ी है, औरत है, उसको लोग देखेंगे कहेंगे ये बड़ी डिसेंट सिस्टर है, ये बड़ी मुहज्जब है, चलती हैं तो बड़े सुकून से, बात करती हैं सुकून से, इज्जत होती है ना। आप इमेजिन कीजिए कि वॉशरूम में जो भी काम इंसान अपनी ज़रूरियात के कर रहा होता है, तहारत के, सफाई के, आपके सामने कोई कर दे तो क्या वो उसकी सफाई सुथराई और उसकी क्लीनलीनेस का मेयार मिलेगा? मैं इसको एक मिसाल से समझाती हूँ। होटल में गए, आपको बड़ी खूबसूरत टेबल पे बिठा दिया, कैंडल्स भी लगी हुई हैं और खूबसूरत कुमकुमें भी हैं और मेन्यू कार्ड सजा हुआ और चमकती हुई प्लेटें। थोड़ी देर में आपने ऑर्डर किया तो एक पे एक खूबसूरत खाना आने लगा, मज़ा आएगा ना? लेकिन अगर आप इस खाने के ख़रीदने से, धोने से, पकाने के सारे मराहल उसी होटल के किचन में खड़े देख रहे हो तो क्या आपको उस खाने की टेबल पे बैठ के वही प्रेस्टीज फील होगी? बस ये फ़र्क है। तो लिहाजा इंसान को हमेशा अपनी शर्म का ख्याल रखना चाहिए, कोई छिछोरी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरा आपकी इज्जत ना करे। या फिर मैं एक साइड इशू है लेकिन हम बड़ी अपने अमल के लिए रहे हैं, दोस्तों में भी अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, शौहर के साथ, बीवी के साथ, उसके साथ, इसके साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुल के इस पे बताया कि बदतरीन है वो मर्द कि जो अपनी बीवी की तन्हाई की बात अपने दोस्तों में करते हैं। एक सहाबी थे, उनकी शादी हुई, अगले दिन लोग पूछ रहे हैं सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, कहा जो बात मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता वो क्यों पूछते हो? इसी तरह फरमाए वो औरत जो अपने शौहर के सामने अपनी सहेली का हुसन खोले, जायब खोले, वो तो पसंदीदा नहीं। शौहर की को पर्सनल बात अपनी दोस्तों से शेयर कर दे, मलून है ऐसे लोग। आप देखिए इस्लाम कितना डिसेंट दीन है, कभी हमने उन चीज़ों पे गौर भी नहीं किया होगा जो अल्लाह सुभान ताला अपने प्यारे नबी के ज़रिए आपको मुझे देते हैं। अब इसको सामने रखिए और हमारे कल्चर की एक बड़ी मारूफ छेड़छाड़ को जहन में रखिए। दूल्हा के साथ छेड़खानी, दुल्हन के साथ छेड़खानियाँ, शादी हो रही है उससे क्या पूछें, उसने क्या किया, कौन किधर गया, कैसे हुआ, दुल्हन से लोग कानों में क्या पूछते हैं, दूल्हा के दोस्त क्या पूछते हैं, और देवरों के साथ क्या मजाक चलते हैं भाभी के, और क्या किस हद तक फ्रैंक है, और फिर कहते हैं ये तो मुझे अपने बच्चों जैसा लगता है, ये तो जब मैं आई थी तो ये तो बच्चा था, इसको तो मैंने मुंह धुलाया था और इसको तो खाना खिलाया था। अब तो नहीं कर सकती ना आप ये सब कुछ, क्योंकि वह 20-22 साल का एक जवान हट्टा कट्टा मर्द बन चुका है। तो हमेशा मर्द औरत के बीच में एक इनविजिबल डिस्टेंस होना चाहिए। आप इज्जत करते हैं, आप प्यार करते हैं। देखिए कुछ रिश्ते वाकई ऐसे होते हैं, और मैं सच कहती हूँ अपने कल्चर को सामने रखते हुए, कि हम दूसरों के बच्चों को बिल्कुल अपना ही कह रहे होते हैं बट वो अपने नहीं हैं। मसलन नंदों के बच्चे, आप में से जिनकी नंदे हैं और वाकई आपके सामने उनकी शादियाँ हुई, फिर उनके बच्चे पैदा हुए और माशाल्लाह वो जवान है, हो सकता है कि आप में से कई लोगों का अपनी नंद का बच्चा और आपका बच्चा एक बराबर लगता हो, बचपन में उसके भी मुंह में रोटी डाली हो, उसके भी डाली हो, बट ये सब्र करना, जो लिमिट्स आपकी अल्लाह ने रखी हैं आपको उसको क्रॉस नहीं करना। मुखलिस रहें, उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखें लेकिन किसी मोड़ पे उनको अपने साथ तन्हा ना करें और बेतकल्लुफ ना, और यही मेयार बाकी रिश्तों में भी है। ठीक है, इस पे कोई सवाल है आपके पास इस टॉपिक पे? क्योंकि अब हम अगले टॉपिक पे जाने वाले हैं। क्लियर है ना? कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी जी?
आपके
खिड़की बंद कर लें उस तरफ की। कोई बात नहीं, आप जरूरत के लिए गई थी ना, फटाफट कपड़े डाल लें और बाहर अंदर। आप इस्तग़फ़ार शुरू कर दें। ये ऐसा होता है कभी आपकी गाड़ी बाहर गई, कहीं ट्रैफिक में रुके हुए हैं, साथ एक गाड़ी आई, वो थिर 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 काँप रही है, गाड़ी को बंद कर लें, शीशों को तिलावत चला लें, और फिर उस वक्त फौरी हल की बजाय, फौरी नहीं कर सकते, याद रखें दावा का एक बड़ा अहम असूल है, हर गुनाह या हर खराबी को फौरी नहीं दूर कर सकते। प्लान बनाएं अच्छे तरीके से, आप अपनी उसी दोस्त को विजिट करें कभी, अगर वो मुस्लिम है तो उनको एक अच्छी तिलावत दे सकते हैं, कोई नशीद दे दें ऐसी चीज़, और अच्छे तरीके से उनको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट करने और फौरन हल्ला गुल्ला करने इससे फ़ायदा नहीं होता। बस तो फिर उनकी मजबूरी है, फिर आप उनको ना छोड़ें, आप खुद अपने आप को बचाएं, ठीक है।